हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सारे रास्ते अर्णव बगल में बैठी धृति की हथेली को कस के थामे बैठा रहा। जैसे जरा सी पकड़ ढीली करते ही वो हवा के झोंके जैसे गायब हो जाएगी और वो एक बार फिर तन्हा और अकेला तड़पता रह जाएगा। पहले तो धृति ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर फिर शांति से बैठकर उसके साथ को महसूस करने लगी। कुछ देर बाद तीनों अर्णव के अपार्टमेंट के गेट के बाहर खड़े थे। कबीर ने डोरबेल बजाई और कुछ ही सेकंड बाद दरवाज़ा खुल गया। माधुरी की नज़र जैसे ही अर्णव के साथ खड़ी धृति पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए।
तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे लिए तो सब झूठ और नाटक है ना? फिर क्या करने आई हो तुम यहाँ?
माधुरी गुस्से से भड़क उठी। उसके ताने सुनकर धृति ने सर झुका लिया, भीगी पलके हल्की से हिली और लबों से धीमी सी आवाज़ बाहर निकली।
सॉरी, मुझे तुम्हारे सॉरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाओ यहाँ से तुम, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती।
गुस्से की तेज माधुरी एक बार फिर धृति पर चीख पड़ी। उसकी ये बेरुखी देखकर धृति सुबकने लगी। अर्णव ने एक नज़र खुद में सिमटी सहमी सी खड़ी धृति को देखा, फिर उसकी हथेली पर अपनी पकड़ कसते हुए माधुरी की ओर निगाहें घुमाई।
माधुरी, धृति मेरे कहने पर यहाँ आई है, इसे मैं यहाँ लाया हूँ।
तो क्यों लाए हो तुम इसे? तुम्हें पता है जब मैंने इसे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया था तो इसने उसे हमारी साजिश कहकर मेरे साथ आने से मना कर दिया था। इसने तो मुझ पर भी विश्वास नहीं किया था। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ। तुम उसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे, मौत से लड़ रहे थे, पर तुम्हारे एक्सीडेंट से इसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा था।
माधुरी अर्णव पर ही बरस पड़ी और उसे सब बताने लगी। अर्णव ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर शांत स्वर में बोला,
सब जानता हूँ मैं, ये भी कि धृति को गलतफहमी हो गई थी कि तुम मेरे साथ मिली हो और हमारा दोबारा मिलना मेरी साजिश है। ये भी कि उसने मुझ पर और तुम पर शक किया था, मेरे मरने की बात को भी मेरा प्लान करार दिया था ताकि उसे मजबूर कर सकूं। ये भी कि तुम्हारे साथ ये हॉस्पिटल नहीं आई थी। ये भी कि अपनी गलती का एहसास होते ही आधी रात को अकेले हॉस्पिटल पहुंची थी ये। और ये भी कि इतने दिनों से रोज हॉस्पिटल आती है, सुबह से रात तक वहां रुकती आई है सिर्फ मेरे लिए। इसलिए मैंने उसे माफ किया। तुम भी माफ कर दो, तुम्हें माफ करना है तो करो, पर मैं इसे माफ नहीं करूंगी। इसने मेरी दोस्ती पर शक किया है।
माधुरी के चेहरे पर दुख व पीड़ा के भाव उभर आए। नाराजगी से चेहरा फेरते हुए वो सामने से हट गई।
कबीर अर्णव को उसके रूम में छोड़कर आया। धृति भी उसके साथ ही थी। धृति मायूसी अर्णव के पास बैठी हुई थी। अर्णव कुछ पल उसके मायूस उदास चेहरे को देखता रहा, फिर उसकी भीगी पलकों की नमी को अपने अंगूठे से चुरापे हुए बेहद नर्म लहजे में बोला,
माधुरी की वजह से उदास होना, चिंता मत करो, जल्द ही मान जाएगी। वो गुस्से की तेज है और अभी थोड़ी नाराज भी, पर प्यार से मनाना तो माफ कर देगी तुम्हें।
धृति ने अपनी तितली जैसी पलकों को उठाते हुए नम आंखों से उसे देखा।
रोना नहीं है जान, सब ठीक हो जाएगा, माधुरी माफ कर देगी तुम्हें। जानती तो हो तुम्हारे लिए सबसे दूर चली गई थी, बहुत खास हो तुम उसके लिए, और जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं उससे ज्यादा वक्त तक नाराज नहीं रह पाते। माधुरी भी तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएगी।
अर्णव बड़ी मोहब्बत से उसे समझा रहा था। धृति ने पलटकर कुछ नहीं कहा, बस अपना सर झुका लिया।
एक काम करो, तुम जाओ और जाकर बात करो उससे।
अर्णव की बात सुनकर धृति ने इनकार में सर हिला दिया और मायूसी से बोली,
नहीं, वो बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे, नहीं करेगी मुझसे बात।
कोशिश तो करो, जाओ जाकर बात करो, मान जाएगी वो।
अर्णव ने उसे हिम्मत दी तो धृति घबराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ बाहर माधुरी ड्राइंग रूम में लगे काउच पर नाराज सी बैठी थी। कबीर भी उसके बगल में आकर बैठ गया और उसकी हथेली को थामते हुए बोला,
क्यों इतना गुस्सा करती हो? इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं मधु, इससे भाभी के साथ साथ तुम्हें भी तकलीफ हो रही है। जो होना था हो गया, अब भाभी और अर्णव के बीच सब ठीक हो गया है, अर्णव खुश है, अब तुम भी ये नाराजगी भूलकर माफ कर दो उन्हें।
कबीर ने माधुरी के गुस्से को शांत करते हुए उसे समझाने की कोशिश की, पर माधुरी ने तुरंत ही इनकार कर दिया और नाराजगी से बोली,
नहीं, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैंने सबके खिलाफ जाकर उसका साथ दिया और उसे एक पल नहीं लगा मेरी दोस्ती पर सवाल उठाते हुए। मैंने तब भी उस पर विश्वास किया जब वो अनजान थी मेरे लिए, और उसने हमारी इतने सालों की दोस्ती के बाद भी मुझ पर विश्वास तक नहीं किया। अर्णव के एक्सीडेंट को नाटक कहा, उसे देखने भी नहीं गई। तुम्हें नहीं पता कितने गंदे तरीके से बात की थी उसने मुझसे? मैं नहीं माफ करूंगी उसे।
सच में माफ नहीं करोगी? माधुरी के चुप होते ही धृति की रुंधी हुई आवाज वहां गूंज उठी। माधुरी और कबीर ने चौंकते हुए आवाज की दिशा में निगाहें घुमाई तो उन दोनों से कुछ कदमों की दूरी पर ही धृति खड़ी थी, जिसकी भीगी निगाहें माधुरी पर टिकी थीं। धृति पर नजर पड़ते ही माधुरी के चेहरे पर सख्त भाव उभर आए।
नहीं करूंगी, और अपने ये आंसू दिखाकर अर्णव को पिघलाना, मुझ पर इन आंसुओं का कोई असर नहीं होगा। मैं तुम्हारे आंसुओं के बहकावे में नहीं आने वाली हूँ मधु, कबीर ने उसे टोका, पर माधुरी ने आंखें दिखाते हुए उसे चुप करवा दिया। इतने में धृति उसके पास चली आई और घुटने जमीन पर टिकाते हुए दोनों हथेलियों से अपने कान पकड़ लिए। माधुरी ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया।
सॉरी, जानती हूँ उस दिन मुझे बिना सोचे समझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें, तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, मेरी बातों ने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई होगी ये भी जानती हूँ मैं। गलती मेरी है इसलिए मैं कोई सफाई नहीं दूंगी और ना ही कोई बहाने बनाऊंगी। अपनी गलती मानकर माफी मांग रही हूँ। माफ करना ना करना तुम पर निर्भर करता है, पर मैं तब तक तुमसे माफी मांगती रहूंगी, तुम्हें मनाने की कोशिश करती रहूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, क्योंकि अपनी एक गलती के कारण मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। माधुरी, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरी तो सबसे पहली दोस्त हो। तुम्हें मैंने अपने बहुत से रिश्तों को जिया है। तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा वक्त तक नाराज नहीं रहने दूंगी। और मैं जानती हूँ कि तुम भी बहुत प्यार करती हो मुझसे, और जिनसे हम प्यार करते हैं ज्यादा वक्त तक उनसे नाराज नहीं हो पाते। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें उल्टा सीधा कहा, तुम पर शक किया, तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया, माफ कर दो मुझे प्लीज। वो माफी भी इतनी मासूमियत से मांग रही थी कि माधुरी का दिल पिघल गया। पर इतनी जल्दी माफी देकर उसे ना तो अपनी वैल्यू कम करनी थी और ना ही धृति को और गलतियां करने का लाइसेंस देना था। आज मनाने में मेहनत करनी पड़ेगी तो सबक मिलेगा कि आगे से ऐसी गलती नहीं करनी है। इसलिए माधुरी अब भी मुंह ऐंठे यूं बैठी रही जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। धृति ने उसे अब भी नाराज देखा तो अपनी दूसरी कोशिश शुरू की और उसके पास आकर उसकी हथेली थामते हुए बोली, माधुरी मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे लिए सबके खिलाफ चली गई, अपना प्यार त्याग दिया, हर मुश्किल घड़ी में मेरी हिम्मत बनी, पर मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। पर उस वक्त मैं पहले ही बहुत परेशान थी, नादानी में गलती हो गई मुझसे, तुम्हें गलत समझकर इतना कुछ सुना दिया। आई प्रॉमिस ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, माफ कर दो प्लीज, बस इस बारी माफ कर दो, गलती से गलती हो गई, आई प्रॉमिस दोबारा कभी नहीं करूंगी, प्लीज 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 माफ कर दो। तुम ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी बहन से भी बढ़कर हो, अगर तुम मुझसे रूठ जाओगी तो कौन समझेगा मुझे और मैं किसे अपने दिल की बात बताऊंगी।
तुम्हें पता है जब से तुम मुझसे नाराज हुई हो कितना अकेला अकेला फील होता है मुझे, ऐसा लगता है जैसे तपते रेगिस्तान में अकेली खड़ी हूँ, जल रही हूँ पर कोई छाया और ठंडक देने वाला नहीं। तुम्हारी बेरुखी से इतनी तकलीफ होती है जितनी कभी अपनी माँ के तानों और नफरत भरी बातों से भी नहीं हुई, क्योंकि उनका प्यार तो कभी मिला ही नहीं था, पर तुम्हारी मोहब्बत को तो मैंने अपनी बेवकूफ़ी में पाकर भी खो दिया। धृति का गला भर आया था और आंखें बरसने को आतुर थीं। आगे उससे एक शब्द न बोला गया और वो सर झुकाए सिसकने लगी। धृति के आंसू देखकर और उसकी भावनाओं से सराबोर बातें सुनकर माधुरी भी भावुक हो गई। अपनी झूठी नाराजगी उसने पल में त्याग दी और धृति को अपने गले से लगा लिया। पलकें उसकी भी भीग गई थीं। आखिर आसान तो उसके लिए भी नहीं था धृति से नाराजगी दिखाना, उससे दूर रहना। कबीर ने दोनों दोस्तों को गले लगे रोते देखा तो चुपचाप उठकर अर्णव के कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ देर तक दोनों दोस्त यूं ही एक दूसरे के लगे लगी रहीं। धृति रो रही थी और माधुरी उसे संभाल रही थी। फिर माधुरी ने उसे खुद से अलग किया और सोफे पर अपने बगल में बिठाकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए नाराजगी से बोली, तुम ना रोती बहुत हो, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने आंखों में नल फिट करके भेजा है जिससे वक्त पे वक्त लीकेज होती रहती है, और अपने इन्हीं आंसुओं को हथियार बनाकर तुम सबसे अपनी बात मनवा लेती हो। यहाँ माधुरी धृति से उसी की शिकायत लगा रही थी और धृति ठीक ही अब भी सुबकने में लगी थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम रूठ गई थी तो लग रहा था जैसे सारी दुनिया मुझसे रूठ गई है, और अब मेरे पास अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। धृति की बात सुनकर माधुरी एक बार फिर भावुक होने लगी, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाला और आंखें दिखाते हुए खींचते हुए धृति को फटकार लगाई। उफ़ो, इतनी सेंटी सेंटी बातें करके क्या आप मुझे भी रुलाने का इरादा है तुम्हारा? अगर दोनों रोने लगे ना तो गंगा यमुना मिलकर यहाँ बाढ़ ले आएंगी, बाकी सब तो भाग निकलेंगे, पर बेचारे अर्णव का तो कुछ ख्याल करो, टूटी टांग लेकर बेचारा भाग भी नहीं पाएगा। अंत में आते आते माधुरी ने शरारत से आंखें मटकाई और धृति उसका ये पुराना अंदाज वापस देखकर हौले से मुस्कुरा दी। माधुरी भी उसे मुस्कुराते देखकर मुस्कुरा उठी। वैसे धृति, तुम अर्णव के साथ यहाँ आने के लिए और इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए अब कैसे मान गई? जब मैं समझा रही थी तब तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, माधुरी ने भौं उठाते हुए सवाल किया और धृति के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। मानना पड़ा, क्योंकि उन्हें खोना नहीं चाहती थी। अपनी अब तक की जिंदगी में मैं प्यार के लिए तरसती आई हूँ। बचपन में पापा बहुत प्यार करते थे, परवाह भी करते थे, ख्याल भी रखते थे, पर उनका साथ और प्यार बचपन में ही छिन गया। उसके बाद माँ और दीदी की नफरत और रिश्तेदारों से लेकर आसपास के लोगों तक सबकी घृणा और ताने ही मिले। पापा के बाद वही प्यार मुझे मिस्टर सिंह से मिला, वो भी परवाह करते थे मेरी, ख्याल रखते थे मेरा, और मैं पापा के जैसे उन्हें नहीं खो सकती थी। अगर मेरे वजह से उन्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। मेरे लिए मेरे दर्द, नाराज़गी, गिल्ट सबसे ज़्यादा अहम उनकी जान है,
और उनकी जान बचाने के लिए मैंने अपना फैसला बदल दिया। मतलब तुम अर्णव को खोने से डर गई? माधुरी ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा और धृति ने सहमति में सर हिला दिया। डर गई थी मैं। चंद गिने चुने लोग हैं मेरी जिंदगी में जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्हें खोने से मैं डरती हूँ, और उन सब में मिस्टर सिंह सबसे पहले आते हैं, जिन्हें मैं किसी कीमत पर खो नहीं सकती। पर उससे दूर रहकर उसे तड़पा सकती हो? माधुरी ने अगला सवाल दागा और तीखी निगाहों से उसे घूरने लगी। सब जानती तो हो तुम, फिर भी ऐसे बोल रही हो? धृति बेचारगी से उसे देख रही थी, पर माधुरी के चेहरे के भाव जरा ना बदले। उस वक्त मैं स्थिति को अलग नजरिए से देख रही थी और अब नजरिया बदलने के साथ मैंने अपना फैसला भी बदल लिया। मेरे वजह से आकाश को प्यार में धोखा मिला और उन्होंने अपनी जान ले ली। मैं मिस्टर सिंह की अधूरी मोहब्बत को पूरा करके और उन्हें उनके जीने की वजह लौटाकर उस गलती को सुधार रही हूँ। मेरे कारण उस परिवार की खुशियां उनसे छिन गई थीं, तो अब मैं उनकी बहू बनकर उन्हें उनकी खोई खुशियां लौटाना चाहती हूँ। शायद एक वक्त आए जब मैं अपना प्रायश्चित पूरा कर लूँ और मुझे इस गिल्ट से आज़ादी मिल जाए। धृति की बात सुनकर माधुरी की आंखें हैरत से फैल गईं। धृति जैसे ही चुप हुई, माधुरी ने हैरानगी से कहा, मतलब तुम अर्णव के साथ सिर्फ इसलिए हो? तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं, उसके साथ और प्यार की चाहत नहीं? ऐसा नहीं है, मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका अपने लिए भी देना चाहती हूँ। कुछ पल है जो मैंने उनके साथ बिताए हैं, कुछ हसीन लम्हे जब मैं दिल से मुस्कुराई थी, और अब मैं खुद को खुश रहने की, जिंदगी जीने की, अपनी मोहब्बत को अपनाने की इजाज़त देने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी असली खुशी उन्हीं के साथ है। उनके बिना मैं और उनकी मोहब्बत के बिना मेरा वजूद अधूरा है। धृति का जवाब सुनकर माधुरी के लबों पर सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसने एक बार फिर धृति को अपने गले से लगा लिया। धृति, अर्णव वाकई में तुमसे बेहद बेपनाह मोहब्बत करता है। इतना चाहने वाला हम सफर कोई दूसरा नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए जो भी हुआ उसे भुलाकर अर्णव के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करो। खुश रहो, उसे खुश रखो, जिंदगी जियो, प्यार के मीठे मीठे एहसासों को महसूस करो, फिर देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगेगी। तुम भी अब कबीर के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मेरे कारण तुम दोनों का रिश्ता पिछले 3 सालों से एक ही जगह पर ठहरा हुआ है। अब उनकी सजा खत्म करो और उन्हें उनके हिस्से की मोहब्बत लौटा दो। वो भी बहुत चाहते हैं तुम्हें। 3 साल इंतजार किया है उन्होंने तुम्हारा, अब उनसे और इंतजार मत करवाना। एक अच्छी फ्रेंड की तरह धृति ने भी माधुरी को समझाया और उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। मैंने सोच लिया है कि अब उसका वनवास खत्म करूंगी और मुंबई लौटते ही कबीर को शादी के लिए प्रपोज कर दूंगी। धृति माधुरी का प्लान सुनकर मुस्कुरा दी। टू बी कंटिन्यूड।